أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهي بينة المعاني لكونها من المعاني العامة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية. بحث ہماری اس بات میں چل رہی تھی کہ مواد ثلاث کسے کہتے ہیں، اس کی ہم نے تعریف بیان کی، یعنی آشنائی حاصل کی اس سے، اس کی تقسیم کے بارے میں. آج جس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ مواد ثلاث کی تعریف کرنا اصلا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے چونکہ یہ مفاہیم مفاہیم عامہ میں سے ہیں، یعنی اتنی عمومیت پائی جاتی ہے ان کے اندر کہ کوئی بھی مفہوم ان سے برابر نہیں. یعنی اگر عام لفظوں میں اس کو سمجھانا چاہیں کہ یہ مفاہیم اتنے بڑے ہیں کہ سب ان کے تحت ہی جمع ہوتے ہیں، ان سے بالا تر کوئی مفہوم نہیں ہے. یہ ایک بحث ہے معرفت شناسی کے اندر، اپیسٹیمولوجی میں آج کل ذکر ہوتی ہے، منطق کے اندر بھی یہ بحث ذکر کی جاتی ہے، جو تخصصی ابحاث ہیں جہاں پر، کہ بدیہی ہونے کا ملاک کیا ہے. کیونکہ جو امر بدیہی ہوتے ہیں ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی، جو واضح اور روشن ہوں ان کو تعریف انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس سے آشنائی حاصل کرے. لیکن ایک امر ہے ہی بدیہی، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اب یہاں پر بحث ہے علماء کے درمیان کہ بدیہی ہونے کا ملاک کیا ہے، کون سی خصوصیت اگر مفاہیم میں پائی جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ بدیہی ہے. مختلف ملاک ذکر کیے گئے ہیں، میں ان کے اندر تفصیلا جانا نہیں چاہتا چونکہ متن میں اشارہ نہیں ہے ان کی طرف. ایک جو ملاک ہے میں نے اس فصل میں تبیین کیا ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، جو ابتدا ہی کے اندر ایک فصل آتی ہے، فصل نمبر بنے گی، ہاں الفصل الاول من المرحلۃ الاولی، مقدماتی بحث جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو وہاں پر یہ عنوان موجود ہے، فی بداہت مفہوم الوجود، کہ مفہوم وجود بدیہی ہے. یہاں پر تھوڑی ایک نظریے کی میں نے وضاحت کی ہے کہ جس کی طرف علامہ نے اشارہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی مفہوم بسیط ہو، مرکب نہ ہو، وہ بدیہی ہوتا ہے. تعریف اب کس سے کرتے ہیں؟ جنس و فاصل سے، ٹھیک ہے، یا مثلا جنس و خاصہ کے ذریعے کریں گے، یا اس قسم کی جو آپ تعریف کی مختلف اقسام پڑھتے ہیں، حد و رسم، پھر حد تام حد ناقص، حد رسم تام رسم ناقص، ان کے اپنے ملاقات جو ہیں. تو اس میں اگر آپ دقت کریں تو حد تام حد ناقص حد رسم تام رسم ناقص آپ اس وقت تعریف کر سکیں گے کہ جب مفاہیم مختلف اجزاء رکھتا ہوگا، تبھی جا کر ایک کو آپ جنس بنائیں گے، ایک کو آپ فاصل بنائیں گے، ایک کو آپ خاصہ بنائیں گے، ایک کو آپ عرض عام بنائیں گے. لیکن ایک مفہوم مثلا اجزاء ہی نہ رکھتا ہو تو اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ اسے ممکن نہیں ہے. بس ایک ملاک کے جو بیان کیا جاتا ہے کہ مفہوم بدیہی ہے، وہ ہے کہ بسیط ہونا ہے. एक मिलाप जो जिक्र किया जाता है कि जो यहां पर इशारा हुआ है उसकी तरफ, वो ये कि मफाहीम का आम होना, ऐन के साथ आम होना, उमूमियत व शमूलियत रखना, यानी मफहूम इतना आम और इतना बुजुर्ग हो, वसी हो कि कोई भी मफहूम उससे बालातर ना जा सकता हो। तो ऐसा मफहूम क्या होता है? तबीअतन बदही उतना क्या नाम है, बसीत होता है, क्योंकि मफहूम से बालातर कोई मफहूम होगा तो नीचे वाला मफहूम मुरक्कब बनेगा, क्योंकि मुरक्कब बनने में क्या होता है, ये जिन सो फसल फलाना फलाना आता है उसके अंदर आकर। तो एक मफहूम उससे बालातर कोई मफहूम ही नहीं है, तो उसकी तारीफ में आप किसको लेकर आएंगे? मसलन मिसाल देता हूं, आसान करता हूं इस मसले को। मसलन अगर तमाम हालतें मेरे लिए आपकी वाजह हो, रोशन हो, तो आपकी तारीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आकर क्या बताएगा आपके बारे में? यानी आप तालिबे इल्म है मुझे मालूम है, आपका नाम क्या है मुझे मालूम है, आप किस इलाके के हैं मुझे मालूम है, दुरुस्त है? यानी हर चीज का मुझे इल्म है। अब कोई बंदा आके आपका तारुफ तो नहीं कराएगा। तारुफ कब करवाया जाता है? कि जब मेरे लिए कोई ना कोई जहत क्या होती है, मजूल होती है, तब जाकर जो है वो तारुफ होता है इसमें जाकर। खूब, अगर मफहूम इतना आम और इतना शामिल है कि तमाम मफाहीम जो है उसके इर्द गिर्द आते हैं। मतलब मिसाल देता हूं, एक मफहूम शय, शय का मफहूम, मतलब इस कायनात में कोई ऐसी चीज है कि जिसको आप शय ना कह सकते हो? बस ये मफहूम क्या है? आम है। मफहूम वजूद, यानी ऐसी कोई चीज है कि जिसको आप उसके ऊपर मफहूम वजूद का इतलाक ना कर सकते हो? नहीं है। वो चाहे खारिज में हो तब भी मफहूम वजूद इतलाक करेगा, आपके जहन में हो तब भी मफहूम वजूद इतलाक करेगा उसके ऊपर। बस मफहूम वजूद आम मफाहीम में से है, और आम मफाहीम की खसूसियत यह होती है कि इनकी तारीफ नहीं की जा सकती, क्योंकि तारीफ के अंदर मुख्तलिफ मफाहीम को इस्तेमाल किया जाता है तारीफ के अंदर, और वो मफाहीम के जो रोशन तर हों उनसे कि जिसकी आप तारीफ करना चाहते हैं। मतलब अगर आपकी तारीफ करनी हो तो कोई कहता है कि आप तालिबे इल्म हैं, खूब तारीफ नहीं हुई है, मुझे पता है ये तालिबे इल्म है। यानी ऐसे मफहूम से आपने तारीफ करनी है कि जो मफहूम क्या हो, वाजे और रोशन हो, उसके पास आकर मजहूलात में से ना हो, जानता हो। मसलन इंसान की अगर तारीफ की जाती है हैवान और नातिक के साथ, तो जिसके लिए तारीफ की जा रही है उसको यह पता होना चाहिए हैवानियत क्या है, उसको पता होना चाहिए नातिकियत क्या है। अगर उसको हैवानियत और नातकियत का ना पता हो तो इन मफाहिम से इसलन तारीफ नहीं होगी उसकी, उसको पता ही नहीं चलेगा वो है क्या चीज है, फिर आपको मजीद बालातर जाना पड़ेगा। खूब, नतीजा ये निकलता है कि मफहूम आम से ऊपर चूंकि कोई मफहूम नहीं है, बस मफाहिम आमा की तारीफ नहीं की जा सकती। और ये जो मवाद सलास हैं, ये उन मफाहिम आमा में से हैं। यानी आप कायनात की कोई भी चीज ले लें, उनके ऊपर या मफहूम इम्कान सिद्ध करेगा, या मफहूम इम्तना सिद्ध करेगा, या उनके ऊपर मफहूम वजूद सिद्ध करेगा, वो इनसे खाली नहीं है। बस जब ये मफाहिम आमा में से हैं, बस इनकी तारीफ नहीं की जा सकती। खुद बाजों ने तारीफ की है, क्या करें, कहते हैं तारीफ दौरी है, यानी दौर पर मुश्तमिल है, और दौर आपके लिए वाजे है कि आप दोबारा उसी नुक्ते पर आ खड़े हों कि जिस नुक्ते से आपने शुरू किया था, दौरूजी कहेंगे तकदम शैल से उसका लाजिमा आएगा। मतलब आप कहते हैं अलिफ क्या है, कहते हैं है, बे क्या है, अलिफ है, दौर हो गया, वापस वहीं आगे के जहां पे आप खड़े थे। बहरहाल देखें, इसमें मैंने ऐसे ही मतालिब जो है वो ज्यादा बयान करती हैं। वह या बय्यनतुल मआनी, फरमाते हैं कि मवादुस सलास जो है ये बदीही है मआनी के एतबार से, रोशन है। क्यों? ले कौनहा मिनल मआनी अल आम्मा, क्योंकि ये मआनी आम्मा में से हैं कि ला यखलु अन अहदहा मफहूम मिनल मफाहीम, कि कोई भी मफहूम इनसे खारिज नहीं है, इनके दायराकार से बाहर नहीं हो सकता। पस वलिजा कानत ला तो अर्रफ, इसी वजह से इन मफाहीम की यानी मवादुस्सलास की तारीफ नहीं की जा सकती इल्ला बितारीफ दौरिया, मगर ये कि दौरी तारीफ करें आप इसके अंदर। कौन सी तारीफें की गई हैं जो दौर पर मुश्तमिल हैं? कतारीफिल वाजिबे बिमा यलजमु मिन फर्ज अदम ही मुहालू, जिस तरह की कोई ये तारीफ करे कि वाजिब उसको कहा जाता है कि जिसका अदम फर्ज कर लेना मुहाल हो, जिसका अदम फर्ज करने से मुहाल लाजिम आता हो, यानी वाजिबुल वजूद उस वजूद को कहते हैं कि अगर इसके अदम को फर्ज कर लिया जाए तो मुहाल लाजिम आता है। यानी असलन वाजिब तआला के अदम को फर्ज करने से मुहाल लाजिम आता है। खूब, अब कहते हैं कि आपने वाजिब की तारीफ की है, वाजिब की तारीफ में आपने मुहाल का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जिसका दूसरा नाम इम्तना है, मुमतने है। बस वाजिब की तारीफ करना जो है वो मुबतनी है, मुतवक्किफ है किसके ऊपर? इम्तना के ऊपर। खूब, अब कोई कहता है अगर सुम्मा तारीफुल मुहाल, अब हम कहते हैं अच्छा मुहाल की तारीफ करो, इम्तना की तारीफ करो, वो क्या है? वो ये तारीफ करते हैं बेमा यजिबो अल्लाह यकून, कि वाजिब है कि वो ना हो, तब उसकी तारीफ में वजूब आ गया। दोबारा वही बात, यानी वाजिब की तारीफ मौकूफ है मुमतने पर और मुमतने की तारीफ मौकूफ है कि हम वजूब को समझें, यह दोहरी हो जाएगी। ओ मालिक सब मुमकिन वाला वाजिब, या फिर यूं तारीफ कर दे मुहाल की कि जो ना मुमकिन हो और ना ही वाजिब हो, अब इम्कान बीच में आ गया। खूब, मुमकिन की तारीफ करो, बतारीफुल मुमकिन बेमा ला यमतने वजूद हुआ अदम हो, मुमकिन उस वजूद को कहा जाता है जिसका ना वजूद मुमतने होता है ना ही उसका अदम मुमतने होता है, तो इम्तना उसके अंदर आ गया। बस कहते हैं कि आप तारीफें जो भी ढूंढ के लेके आएंगे उसमें दोर पोशीदा है, वो तारीफात दोरी हैं और तारीफात दोरी जो है वो महान है। बस नतीजा निकला जिसकी तारीफ मुमकिन ना हो वो बदही होते हैं और ये मवादुस्सलास जो है वो बदही है। ये फसल हमारी तमाम हो गई। अल फसलु सानी मिनल मरहलत रबिया, इनकिसामु कुल मिनल मवाद इला मा बिज़्ज़ात वमा बिलगैर वमा बिलकियास, फरमाते हैं कि ये जो अभी हमने मवादुस्सलास पढ़े हैं इनमें से हर एक तीन किस्में रखता है, वाजिब की तीन किस्में, मुमतने की तीन किस्में और इमकान की तीन किस्में। पहले इन अकसाम की वजाहत पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो इसको तकसीम करेंगे वाजिब वगैरह की तरफ। मा बिज़्ज़ात, मा बिल गैर और मा बिल कयास, इनको क्या मुराद है इससे? फरमाते हैं कि मा बिज़्ज़ात ये नाजिर है इस बात की तरफ कि हमने शय को उसकी जात के एतबार से देखना है कि क्या हुक्म रखते, कोई खारजी अवामिल को मद्देनजर नहीं रखना। मसलन हम देखते हैं कि आग जाती तौर पर एहराम का इक्तिजा रखती है, जलाना उसकी जात है, यानी आप किसी भी चीज के साथ उसको मुकायसा ना करें, आग की जात इक्तिजा करती है इस बात का कि वो जलाए। बस जलाना आग की निस्बत क्या है? मा बिज़्ज़ात है। इसी तरीके से अब आकर हम मवादुस सलास में इसको तबीन करते हैं, अगर कहा जाए वाजिब बिज़ात, क्या माना है उसका? वाजिब बिज़ात उस वजूद को कहते हैं, उस जात को कहते हैं कि जो इक्तज़ाए वजूद रखती हो। खुदावंद मुताल में जात और वजूद एक ही चीज है, फकत तहलील और मतलब को समझाने के लिए जहनी तहलील करके हम इस बात को समझना चाहते हैं कि वाजिब बिज़ात उस जात को कहा जाता है कि जो खुद ही खुद इक्तिजा उल वजूद करे, जो वजूद चाहे अपने लिए, उसको कहते हैं वाजिब बिज़ात। और मुमकिन बिज़ात फिर क्या हो जाएगा? ऐसी जात कि जो अपने अंदर ना तो वजूद का इक्तिजा रखती हो और ना ही अदम का, हद इस्तिवा, मुतसावियत नस्बा हो। बस अभी हम खारजी अवामिल को देख ही नहीं रहे हैं, अभी हम फकत उसकी जात की तरफ निगाह कर रहे हैं। हमने देखा कि इसकी जात खुसूसियत यह है कि ना ये वजूद मांगती है अपने आप से और ना ही अदम मांगती है अपने आप से। इसको वजूद दे दो तो ले लेती है, अदम दे दो तब भी ले लेती है। चल आगे रखते, खुद से कोई इंतजार नहीं रखती, इसको कहते हैं ये मुमकिन बिज़ात है, यानी अपनी जात में इम्कान है रखती। इम्तना बिज़ात क्या हो जाएगा? ऐसी जात है कि जो इक्तिजाए अदम करती है, जैसे इज्तिमा उन्नकीज़ैन, ऐसी जात है। और अर्ज किया कि ये ऐसी इबारात नहीं है मतलब को समझाने के लिए, इसीलिए इस किस्म की इबारात में कोई बंदा आकर ये ना कहे एक तरफ से इज्तिमा नकीज़ैन मुहाल, दूसरी तरफ उसको जात मान रहे हैं। आकर जात ने मतलब को समझाने के लिए, तहलील करने के लिए इन लफ्जों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इज्तिमा उन नकीज़ैन की जात इक्तिजा करती है कि ये खारिज में ना आए, यानी अदम का इक्तिजा करती है। बस जात जब इक्तिजा करे खुद ही खुद जिस चीज का, वो बिज़ात कहलाएगी। अगर वो वजूब का इक्तिजा करे तो वजूब वाजिब बिज़ात होगा, अगर इम्कान का इक्तिजा करे यानी वहां तो अदम इक्तिजा पाया जाता है जात के एतबार से, तो वो मुमकिन बिज़ात होगा। अगर अदम का इक्तिजा करे अपनी जात में तो क्या होगा? वो मुमतने बिज़ात होगा। बात क्लियर है यहां तक? अभी आते हैं माबिल गैर की तरफ। माबिल गैर के अंदर हमने जात को नहीं देखना, हमने खारजी अवामिल को मद्देनजर रखना है। मसलन अगर हमें अपनी जात के एतबार से देखा जाए, मसलन आपकी जात की तहलील करते हैं, मेरी जात की तहलील करते हैं, आया आपकी जात अपने अंदर वजूद का इक्तिजा रखती है? नहीं, आपकी अपनी जात हो वला कहे अदम का इख्तिजा रखती है? नहीं, क्योंकि अगर वजूद का इख्तिजा रखती तो आपको मादूम नहीं होना चाहिए था, आप एक जमाने में नहीं थे, इसका मतलब है वजूद का इख्तिजा नहीं था आपकी जात का। अगर इख्तिजा उल अदम कर रही होती, अदम उसकी जात में शामिल होता, तो फिर उसको खारिज में नहीं आना चाहिए, हालांकि हम खारिज में बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? हमारी जात में किसी किस्म का कोई इख्तिजा नहीं पाया जाता, बस हम अपनी जात के एतबार से मुमकिन है। लेकिन अगर हमें खारजी एतबार से, अपनी इल्लत के एतबार से देखा जाए, तो क्या इस वक्त जो हम तहक्कुक पैदा कर चुके हैं, इस वक्त हम वाजिबुल वजूद हैं? क्यों? क्योंकि कायदा मौजूद है कि एजा मालम यजिब लम यजिब, यानी जब तक एक चीज वजूब की हद तक ना पहुंचे वो कभी खारिज में आ ही नहीं सकती। वजूब में आने से मुराद क्या है? यानी जब तक उसके अदम के सारे रास्ते बंद ना हो जाए। अगर एक दरवाजा भी अदम का खुला हुआ है तो खारिज में नहीं आ सकते, मुमकिन फिर कहा कहा जाएगा। अब पढ़ेंगे जाके हम ये बातें कि फिर ये वजूद में क्यों, ये अदम में क्यों नहीं गई, हालांकि एक दरवाजा अदम का खुला हुआ था, उधर चली जाती है, इधर क्यों आई है। तो वजूद इसलिए जरूरी है खारिज में आने के लिए। बस नतीजा ये निकला कि हमारा खारिज में होना इस बात से काशिफ है कि हमारा वजूद, हमारी जात जो है वो हद्दुल वजूब तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वे खारिज में आए हैं। सवाल, ये वजूब हमारी जात का तो इक्तिजा नहीं था, क्योंकि हमने जात की तहलील की है कि अगर वजूब जात का इक्तिजा होता तो खारिज में हमें पहले नहीं, पहले मादुम नहीं होना चाहिए था, हमें अजल से होना चाहिए था, हालांकि हम अजल से नहीं। फिर कहते हैं कि ये वजूब गैर ने अता किया है, जात का इक्तिजा नहीं है। बस वो खसूसियत के जो गैर अता कर दे, उस खसूसियत की निस्बत वो बिलगैर शुमार होगा। वाजिब बिलगैर क्या होगा? बस ऐसा वजूब के जो गैर ने अता किया है। मुमकिन बिलगैर क्या हो जाएगा? ऐसा इम्कान के जो गैर ने अता किया है। और मुमतने क्या है? जो गैर ने अता, मसलन मुमतने बिल वाजिब बिल गैर की मिसाल तो दे दी, मुमतने बिल गैर की क्या मिसाल है? मुमतने बिल गैर की मिसाल इल्लत का ना होना। मसलन इस वक्त जो है इंसान मसलन ताजा इज्तेवाज किया हुआ है, उसकी औलाद नहीं है। अब बच्चे का ना होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी इल्लत नहीं है। और बच्चा बेदुने इल्लत तहकुक पैदा नहीं करेगा, क्योंकि बेदुने इल्लत मालूल खारिज में नहीं आता। मालूल का खारिज में ना होना और जरूरी है कि ना हो, ये मुमतने है, यानी इल्लत के ना होने की सूरत में मालूल का होना मुमतने है, लेकिन ये मुमतना उसकी जात में शामिल है नहीं। जो जात में शामिल होता तो इस्तेमाई नकदियान की तरह कभी खारिज में आई नहीं। बस इल्लत की ना होने की सूरत में मालूल का होना, यानी आग, आग आग की मिसाल नहीं लेते, ऐसी मिसाल लें कि जो मुनहसिर दर फर्द हो। ये खुदा की मिसाल ले लेते हैं, यानी फर्ज करने खुदा ना हो लेकिन वो मखलूकात हो, कहते मुमतने है ये, नहीं हो सकता क्योंकि तो मखलूक की खालिक होना चाहिए, इल्लत होनी चाहिए आत्मा। बस ये मखलूक का होना बेदुने इल्लत मुमतने है, इम्तिनाज की जात में तो नहीं है। पर जात में नहीं है, गैर ने दी है। किसने दी है? यानी अदम इल्लत की तरफ से आया है, यानी अदम इल्लत थी तब मुमतने हुआ ये, वाइला अगर इल्लत होती तो मुमतने नहीं था, बल्कि क्या था? वाजिब था। बस ये मुमतने बिल गैर की मिसाल है। हाँ, मैं वही कहता हरारत, कोई बंदा आगे मतलब ये कहे कि हरारत कहीं और से आ जाए, मैं इसलिए कह रहा था कि मिसाल ऐसी लेंगे जो सवाल वाला है। हाँ, आग वाली हरारत आग से ही हासिल होगी, ऐसा नहीं है कि आग ना हो और आग वाली हरारत मौजूद हो, मुमतने या नहीं हो सकता। अगर कोई हरारत हुई भी सी तो वो कोई और होगी, रगड़ की वजह से होगी, सूरज की वजह से होगी, जो भी होगी, लेकिन आग वाली हरारत नहीं होगी। मतलब आज हो रहा, बस हमें बिलगैर की समझ भी आ गई। अब कौन सी चीज रह गई है? बिलकयास जी, इमकान बिलगैर बाद में इसकी वजाहत करता हूँ, क्योंकि इमकान बिलगैर जो है मुहाल है, कैसे है वो फिर उसकी वजाहत बाद में करूंगा। खूब, आ जाते हैं अब बिलकियास के ऊपर। बिलकियास में यहां मुकायसा पाया जाता है, जात से हम बाहर आते हैं। जब हम बिलकियास की बहस करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा मद्देनजर जात नहीं है, अभी हमने दो चीजों में मुकायसा करके नतीजा लेना है, जात को नहीं देखना। पहले हम जात की बातें कर रहे थे, जात या तो वजूब चाह रही है, जात या तो अदम चाह रही है, जात है जो इम्कान चाह रही है, अगर उसकी इल्लत है तो ये नहीं होगा, अगर अगर इल्लत है तो होगा, नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, अगर है तो मुमकिन है, ये जात की बातें हो रही है। अभी बिलकियास की बात है, यानी आपने यहां देखना है हमारे पास दो चीजें हैं, आया अलिफ और बे के दरमियान कोई राबता है या नहीं है, कैसा राबता है फिर इनके दरमियान, आया राबता लुजूमी है या राबता इनादी है या असलन राबता जो है इनके अंदर इमकानी किस्म का पाया जाता
है। लेकिन पहले जो दो साल रखने की बजाय इल्लत तो मालूम ही खाने है।
ना, वो खुद उसकी जात को मद्देनजर रखकर हम नतीजा ले रहे थे, मतलब ये अपनी जात में या मुमकिन है या वाजिब है या मुमतने है, बिल गैर में हाँ सही, इल्लत तो मालूम वाली बहस, लेकिन फिर भी जात की बात हो रही थी वहां भी, वहां भी इस किस्म का मुकायसा नहीं था। अभी हम फकत मुकायसा देख रहे हैं, हाँ हाँ खुद वो उसका वजूद कहां से आया हमें सरोकार नहीं है, उससे हमने फकत ये देखना है कि आया अलिफ होने की सूरत में बे का होना हतमी है या नहीं है। अब ये हतमी होना ना होना कहां से आया है इससे अभी हमारा सरोकार नहीं है। वो बिलगैर में हम क्या करते थे, बिलगैर में हम कहते थे कि गैर ने ये वजूद दिया उसको, गैर ने उसको इम्तना दी, गैर ने उसको जो है वो इम्कान दिया। यहां पर गैर की बात नहीं अभी हो रही है, अभी हम फकत ये देख रहे हैं आया आग अगर हो तो रोशनी का होना जरूरी है या जरूरी नहीं है, हरारत का होना जरूरी है या जरूरी नहीं है, बस यहां हमने ये चीज फकत देखनी है। अब ये जरूरत होना या ना होना कहां से आया इससे भी हमारी बात नहीं होगी। बिलकियास में यूं करके देखेंगे, मतलब मिसाल देता हूं आपको वजूब बिलकियास की, आप कहते हैं कि ये छत है, या छत की मिसाल छोड़ दें, आप मसलन कहें कि ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की ताबीर आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब नीचे का मफहूम आपको पता हो, आपने असल नीचे का मफहूम सुना ही ना हो तो आप कभी ऊपर का मफहूम लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बस ऊपर का मफहूम अगर आएगा जहन में तो फौरन नीचे के मफहूम में भी आपके जहन में आना है। अब यहां क्या है, ऊपर का मफहूम के होते नीचे का मफहूम भी हतमी मौजूद है, यहां पर आप वजूब बिलकियास है तजायुफ की तरह, ये तजायुफ की मिसाल, यानी आप वजूब बिलकियास के अंदर तजायुफ की जितनी मिसालें ला सकते हैं ले आए, मुतजायफान जितने भी हैं वो इसी वजूब बिलकियास की मिसाल बनेंगे। मुमतने बिलकियास क्या बनेगा, मुमतने बिलकियास जो है वो इस तरीके से यहां पर बयान करते हैं कि जिस तरीके से अभी क्या कहा है कि अगर बाला या ऊपर का मफहूम आपके जहन में आ गया तो हतमन किसको होना चाहिए, नीचे के मफहूम को होना चाहिए। अब कोई कहता है कि ना मफहूम ऊपर तो मेरे जहन में है लेकिन नीचे नहीं है, कहते हैं ये मुमतने है, नहीं हो सकता, मुतजायफान हमेशा एक साथ तसव्वुर होते हैं, मुहाल है मुमतने है कि मुतजायफान हो लेकिन एक तसव्वुर में आए दूसरा तसव्वुर में ना आए, नहीं हो सकता। बाप कहने से बेटे ने लाजमी जहन में आना है, अच्छा नहीं हो सकता कि आप बाप कहो लेकिन बेटे का मफहूम जहन में ना आए बाप उसको कहा इसीलिए क्योंकि वो बेटा रखता है, जितनी भी आप तजायुफ की मिसालें बना सकते हैं, बस इम्तिना अब बिलकियास क्या हो जाएगा, यानी एक मुतजायफैन में से एक का फर्ज करने से आप दूसरे को फर्ज ना करें, ये मुमतना नहीं हो सकता, दूसरे ने अजमन जो है वो होना है, ये इम्तिना बिलकियास है। यानी अब यहां से हम ये नहीं कह रहे कि बिल गैर है कि गैर ने अता किया इसको, ना असल आपस में जब हम मुकायसा करते हैं इस कयास का यह नतीजा निकलता है कि अगर एक है तो दूसरे का होना आत्मी है, यूं नहीं हो सकता कि एक हो दूसरा ना हो, ये मुमतने बिल कियास है। इम्कान बिल कियास क्या हो जाएगा, इमकान बिल कियास कहते हैं इसकी खारिज में कोई मिसाल ही नहीं है। इमकान बिल कियास वहां पर काबिले तसव्वुर है, दिक्कत करें, इमकान बिल कियास वहां पर आप तसव्वुर कर सकते हैं जहां पर दो चीजों के दरमियान राबता जो है लुजूमी ना हो। वहां पर आप इमकान बिल कियास को तसव्वुर कर सकते हैं। खूब, अब खारिज में कोई ऐसी चीज दिखाएं जिनका राबता आपस में जरूरी ना हो।
सफेद और सियाह,
नहीं है, बिलकियास की बात हो रही है ना। मालूल अपनी इल्लत की निस्बत जो है वो जरूरत रखते या नहीं रखता? इल्लत ना हो तो मालूल का होना जो है वो मुमतने है या नहीं है? यानी आप ऐसी चीज बताएंगे जिसमें आप ये कह सकते हो कि जहां पर अलाका इस किस्म का मौजूद नहीं है किसी चीज के अंदर। असल रब्ता कहते हैं कि खारजी मिसाल इसकी असलन नहीं है। फर्ज कर सकते हैं हम, कैसे? दो वाजिबुल वजूद फर्ज कर, उनको आपस में मुकायसा करें। आप कहते हैं ये दो मफहूम है वाजिबुल वजूद जो आपने फर्ज किए हैं, इनका आपस में कोई रब्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इल्लत ताम है, ये भी इल्लत ताम है, दुरुस्त? आपस में इनका कोई रब्ता ही नहीं है, कोई लजूमी किस्म का। मसलन आप और कोई भी मिसाल ले लें, या उनमें इल्लत और मालूल का राबता होगा या वो दोनों तीसरी इल्लत के मालूल होंगे। मतलब स्याही सफेदी जो आपने मिसाल दी है, ये मखलूक है या नहीं है? हाँ, मखलूक है, वो इल्लत सालिस मतलब उसका हो जाएगा उसमें। यानी हतमन जो है उनके दरमियान इल्लत और मालूल का राबता है। इमकान हमें वहां मिलेगा कि जहां उन दो चीजों के दरमियान इल्लत और मालूल का राबता ना हो, और वो कहां है? जहां दो वाजिब फर्ज करें आप आकर। वाइल तमाम कायनात कम अज कम मालूले खुदा तो है आपस में, अगर इल्लत तो मालूम नहीं है जैसे स्याह सफेदी है।
लेकिन आपने बिल कियास की उसकी तारीफ बताया कि हमें इसी कंसर्न नहीं है कि ये सीरिया भी असली है, हमारे ये आपस में क्या तालुक है।
आपस
ठीक
में
है, मिसाल के तौर पर अगर सफेद है तो कियास बिल गैर,
भाई ना, क्या इमकान बिल कियास चाहिए ना हमें, यानी दो
तो
चीजों का आपस में मुकायसा करें और उनका राबता जो हो क्या हो,
इमकान
इमकान का होना
मिसाल के
चाहिए।
तौर पर इंसान और ये कुर्सी, कुर्सी अगर है तो मुमकिन है कि इंसान हो या ना हो, क्या जरूर है तो इमकान क्या जरूर हो गया।
नहीं, इमकान नहीं बनेगा यहां पर,
ऐसे
क्योंकि ये दोनों, क्योंकि आपका इल्लत के साथ अगर मुकायसा करते हैं तो इसका और आपका राबता जो है वो लुजूमी में आ जाता है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि फकत दो चीजों को मद्देनजर रखना है।
क्या किसके दरमियान में करना है, यानी किन चीजों पे बनाया? ये कहना चाह रहे कि जब आप एक चीज को लेते हो तो वाजिब रहता है ना,
हाँ,
वाजिब इधर के एक चीज को हम जब सोचते हैं तो दूसरा हतमन जेन में आती है, वो हो जाएगा वजूद, यानी क्या
देखिए,
जगह में।
हाँ, मैं दोबारा इसको मतलब को मजीद बयान कर दूं, मुमकिन है पिछले मतलब में जिक्र ना किया गया हो। मतलब ये जो हम कह रहे हैं बिल कियास वाली बात है, ये बिल कियास वाला राबता कायम इल्लत और मालूल के दरमियान में होता है, दुरुस्त है? इल्लियत मालूल इबारत में पढ़ेंगे, अल्लामा ने इसकी तरफ इशारा किया है। यानी बिल कियास, ये जो वजूब बिल कियास है, इम्तना बिल कियास है, ये वहां पर हासिल होगा कि जहां दो चीजों के दरमियान इल्लत तो मालूल का रब्ता हो, या खुद वो आपस में इल्लत तो मालूल हो जिस तरह के आग और हरारत है, या फिर क्या हो, वो दो चीजें किसी तीसरी चीज की क्या बन रही हो, मालूल बन रही
तो ये वजूद बिल गैर भी यही कहानी है, वजूद बिल गैर के अंदर क्या था, वो इल्लत मालूम भी दो चीजें थी।
हाँ, इल्लत मालूम था ना, वजूब बिल गैर ना, वजूब बिल गैर के अंदर मुकायसा नहीं कर रहे थे हम आकर, हम फकत ये देख रहे थे कि ये जात तहकुक पैदा कर चुकी है, खारिज में आ चुकी है, इसका ये वजूब कहां से आया, इसकी जात में कोई इक्तदाल वजूद था ही नहीं, ये देख रहे थे हम उसमें कि इसकी जात में वजूद तो था ही नहीं, तो ये वजूद में आई कैसे? हम कहते हैं इल्लत ने दिया उसको। अब मुकायसा नहीं किया अभी हमने, हमने फकत इस चीज को देख के फैसला कर लिया, भाई इसको किसी ने दिया तब ये आया है, इसका अपना तो था ही नहीं। यहां पर आके हम मुकायसा करके नतीजा ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक तरफ आग है एक तरफ हरारत है। अब इनको जब हम मुकायसा करते हैं आपस में, मुकायसे के बाद वजूद पैदा हो रहा होता है, हम कहते हैं हतमी है अगर आग है तो हरारत भी हो, हतमी है कि ممتنع ہے کہ آگ ہو لیکن حرارت نہ ہو, یا حرارت ہو لیکن آگ نہ ہو, یہ ممتنع ہے. یہ مقایسے کی صورت میں مفاہیم نکل رہے ہیں, ذات سے آپ مد نظر نہیں رکھتے اس میں آ کے. بس یہ بالقیاس کہاں پر مانا پیدا کرتا ہے؟ جہاں دو چیزوں کے درمیان علت و معلول کا رابطہ ہو, یا وہ دو چیزیں جو ہوں کسی تیسری چیز کی علت واقع ہو رہی ہوں. بس اگر یوں ہے بالقیاس میں, تو پھر امکان بالغیر جو ہے وہ آپ فرض نہیں کر سکتے مگر یہ کہ دو واجبوں کے درمیان فرض کریں, یعنی اس کی مثال فرضی بنیں گی, کیونکہ دو واجب الوجود آپس میں نہ تو علت و معلول کا رابطہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز ان کے اوپر ہے جو ان کی علت واقع ہوگی, بھائی واجب نہیں ہوں گے. بس امکان بالقیاس کی مثال فرض کی جا سکتی ہے لیکن خارج میں نہیں ہے. یہ ایک امتحانی سوال ہے اس طرح کر کے. امکان بالغیر کو جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ خلط ہو جاتا ہے بعض اوقات. ایک امکان بالقیاس ہے اور ایک امکان بالغیر ہے. نہیں معلوم عبارت پڑھ پائیں گے نہیں, میں مطلب تو تمام کر دیتا ہوں. امکان بالغیر کی طرف آتے ہیں, بالقیاس سمجھ میں آ گیا. اب آتا ہے امکان بالغیر کی طرف, کیونکہ میں نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی, یہاں پر وضاحت کرتا ہوں. یہ پورا چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا, فقط تطبیق عبارت کرنی ہے. کہتے ہیں امکان بالغیر اس کی نہ تو خارج میں مثال ہے اور نہ ہی اس کی مثال فرض کر سکتے ہیں. امکان بالقیاس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ خارج میں نہیں ہے. ہاں, چونکہ خارج میں تو سب کے درمیان علت و معلول کا رابطہ ہے, لیکن فرض کر سکتے ہیں. فرض محال محال نہیں ہے. مثلا دو واجب کا آلہ کو فرض کر لیتے ہیں, ان کے درمیان جو امکان بالقیاس ہے. ہاں, امکان بالغیر میں اسلام اس کو فرض نہیں کر سکتے. امکان بالغیر کو چل جائے کہ ہم اس کا کوئی مثال ڈھونڈیں اس کی. کیسے؟ امکان بالغیر کا معنی, بالغیر کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ دقت کریں, مطلب بہت واضح سمجھ میں آ جائے گا. بالغیر کا ہم نے معنی کیا کیا تھا؟ یعنی غیر جس صفت کو عطا کرے اس کو, اس کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں بالغیر. وجوب بالغیر یعنی ایسا وجوب کہ جو غیر نے دیا ہو. ممتنع بالغیر یعنی ایسا امتناع کہ جو غیر نے عطا کیا ہے. امکان بالغیر کا کیا معنی ہو جائے گا؟ غیر نے عطا کیا. خوب, یہ چیز کیا ہے؟ ممکن بالغیر. فرض کر لیں ہم کہتے ہیں اس کے امکان کو غیر نے عطا کیا ہے, تو اپنی ذات میں یہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بھی ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ عام مفاہیم میں سے ہیں. کائنات کی کوئی بھی چیز ان تینوں سے خالی نہیں ہے, یا واجب ہے یا ممکن ہے یا ممتنع ہے. ابھی ہم فرض کر لیتے ہیں یہ جو مارکر ہے یہ اس کا امکان بالغیر ہے. کیا مراد؟ اس کا امکان اپنا نہیں ہے, یہ خود ممکن نہیں تھی, غیر نے امکان اس کو عطا کیا ہے. خوب, ہم کہتے ہیں اگر غیر نے امکان دیا تھا, غیر کے امکان دینے سے پہلے یہ کیا تھی؟ دو ہی چیزیں بچتی ہیں پیچھے, یا واجب تھی یا ممتنع تھی. اگر کہیں یہ واجب تھی, انقلاب ذات لازم آئے گا, چونکہ ہم اس کو ممکن مان رہے ہیں, آپ واجب کہہ رہے ہیں اس کو. اگر کہیں ممتنع ہے تو پھر خارج میں ہے. ممتنع کیسے ہے؟ حالانکہ ہم اس کو ممکن مان رہے تھے. خوب, یہ تو فرض ختم ہو گئے اس میں آ کے. تو امکان بالغیر اگر مانے تو اس کا مطلب یہ کیا ہو جائے گا کہ یہ ذات اپنی میں کچھ بھی نہ ہو, نہ ممکن ہو, نہ واجب ہو, نہ ہم نے کہا ہے کہ کائنات کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں. مطلب فرض نہیں کر سکتے امکان بھی لگائے.
امکان ہی مانے تو
کس کو امکان مانے گے؟ تو بھی ذات ہوگا وہ. اب یہ ہماری,
ہاں پہلی
کیا تھی؟ آپ نے دو تصور کیے, امکان وہ تحصیل حاصل لازم آئے گا نا, لفظ لازم آئے گا. امکان تھی تو بالغیر کیسے ہو گئی؟ پھر تو اس کی ذات میں امکان شامل ہے نا. غیر کو تب دے گا امکان کا جب امکان نہ رکھتا ہو.
پہلے
سے پاس ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن تھی تو پھر غیر نہیں ہے.
تو سوال میرے نام میں ہے
ہم یہ مثال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی ہم فرض بھی نہیں کر سکتے. فرض نہ کرنے کو ہم فرض کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ یوں ہو سکتا ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی آگے یہ ادعا کر دے کہ یہ مارکر کا امکان غیر نے دیا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے. خوب, ہم کہتے ہیں کہ امکان اس کو غیر نے دیا. ہم کہتے ہیں کہ جب تک امکان غیر نے امکان اس کو نہیں دیا تھا, خود یہ کیا تھی؟ या वाजिब या मुमतन है, नहीं दोनों मुहाल है, इनका इनकलाब उस लाजिम आएगा। अगर कहो कि ना ये मुमकिन ही थी पहले, तो फिर गैर ने इम्कान क्यों देना है इसको, मेरे पास पैसे हों जितनी मुझे जरूरत है, दूसरे की जरूरत नहीं है, मैं वजूद रखता हूँ फिर मुझे वजूद देने की क्या जरूरत है, अरे मुमकिन नहीं है। बता दो तमाम किस्में मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी है, इसका तर्जमा इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में बयान कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, चूंकि अभी शुरू कर दिया तो बीच में रह जाएगा, इसको बाद में कर लेंगे।